पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष से तो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत अध्याय राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। मानव में राजनीतिक चेतना किस समय और किस वातावरण में आई, इस संबंध में हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जान पाते। जहां इतिहास असफल हो जाता है वहां हम कल्पना का आश्रय लेते हैं, गिलक्राइस्ट ने कहा। व्यक्ति स्वभावतः ही जिज्ञासु है और अपनी इस जिज्ञासा के कारण उसने राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने का प्रयत्न किया है, किंतु इतिहास द्वारा राज्य की उत्पत्ति का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सका और इस कारण कल्पना का सहारा राजनीतिक विचारकों द्वारा लिया गया। मनुष्य राजनीतिक संगठन में क्यों रहते हैं, वो प्रभुत्व के सम्मुख क्यों झुकते हैं, प्रभुत्व की क्या सीमाएं हैं आदि के संबंध में विचारकों का जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर राजनीति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें से प्रमुख हैं दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और राज्य मार्क्सवादी सिद्धांत। सर्वप्रथम दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था है और ईश्वर या तो स्वयं कार्य करता है या अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। राजा ईश्वर पर ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम कर्तव्य है। इस सिद्धांत के प्रमुख तत्व, राज्य एक मानवीयकृति नहीं वरन ईश्वरीय सृष्टि है। राजशक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है, ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि में निहित होता है, उसी प्रकार राजा का सभी कार्य ठीक, न्यायसंगत और आवश्यक रूप से जनता के हित में होते हैं। राजसत्ता पैतृक होती है, अर्थात पिता के बाद पुत्र सत्ता संभालेगा। राजाओं की आलोचना या निंदा धर्म विरुद्ध है, इसी बात के आधार पर जेम्स प्रथम ने कहा था, ईश्वर क्या करता है इस पर वाद विवाद करना नास्तिकता है तथा पाखंड है। इसी प्रकार प्रजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना अथवा उसके द्वारा यह कहा जाना कि राजा यह कर सकता है और यह नहीं कर सकता, राजा का अपमान, अनादर और तिरस्कार करना है। दैविक सिद्धांत के समर्थक, विविध धर्म ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। सेंट अगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आगे चलकर अन्य ईसाई संतों ने यह कहा कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। इसी प्रकार महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह प्रतिपादन किया गया कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ है तथा राजा मनुष्य के रूप में एक महती देवता होता है। इस सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया, जिसका प्रसिद्ध वाक्य है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जेम्स प्रथम के बाद रॉबर्ट फिलमोर और बूजे के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। देवी सिद्धांत की आलोचना, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रचलित रहा, किंतु आज के वैज्ञानिक और प्रगतिशील संसार ने इसे अस्वीकार कर दिया गया है। वस्तुतः सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही आधार पर यह सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। देवी सिद्धांत की प्रमुख रूप से निम्न आलोचना है। प्रथम, यह अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है। यह सिद्धांत अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक तथा मानवीय अनुभव के विरुद्ध है। वस्तुतः राज्य एक मानवीय संस्था है तथा राज्य के कानूनों का निर्माण व उन्हें लागू करना मनुष्य का ही कार्य है। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य ईश्वरकृत है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में, यह धारणा कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। द्वितीय, राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। राजा को ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं मानने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपने आप को ईश्वर का अंश कहने वाले शासकों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए और उन्हें ईश्वरीय प्रकोप से डराकर उन पर निरंकुशता का व्यवहार किया। तीसरा, हमारे धर्मग्रंथ यही बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया का भंडार है, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत राजा बहुत अधिक अत्याचारी और दुष्प्रतिकृति के होते हैं। इन दुष्ट राजाओं को प्रेम और दया के भंडार ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे कहा जा सकता है? ऐसी परिस्थितियों में देवी सिद्धांत नितांत अतार्किक हो जाता है। प्रारंभ में चर्च के पादरियों का मत था कि ईश्वर द्वारा बुरे राजा को जनता को दंड देने के लिए भेजा जाता है, परंतु जनता चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, नैतिकता में किसी भी सिद्धांत के अनुसार बुरे राजा ईश्वरीय नहीं हो सकते। चौथा, रूढ़िवादी धारणा है। दैवी सिद्धांत को मानने का परिणाम होगा कि राज्य को पवित्र पावन संस्था समझकर उसके स्वरूप के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे और राज्य का अपरिवर्तित समूह स्वरूप मानव के लिए उपयोगी नहीं रह सकेगा। पांचवा नास्तिकों के लिए निरर्थक है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों के लिए राजा की आज्ञा पालन का आधार बन सकता है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति राजा की आज्ञाओं का पालन क्यों करे, इसके लिए सिद्धांत में कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। छठा, वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक राज्यों में राज्य के प्रधान को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, अतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन कि राजा को ईश्वर नियुक्त करता है नितांत अवास्तविक और काल्पनिक हो जाता है। महत्व, यद्यपि आज दैवी सिद्धांत को अस्वीकार किया जा चुका है, लेकिन प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबद्ध समझता था, यह सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुआ। राज्य को दैवी संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर इस सिद्धांत ने प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा व्यवस्थित जीवन की नींव रखी गई। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि यह सिद्धांत चाहे कितना भी गलत और विवेक शून्य क्यों न हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसे अवश्य प्राप्त है। इस सिद्धांत का इस दृष्टि से भी महत्व है कि यह राजनीतिक व्यवस्था के नैतिक आधार पर जोर देता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि भी होता है, यह बात असत्य होते हुए भी उसमें इस बात की ध्वनि मिलती है कि शासक का ईश्वर के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है और इसे शासन की शक्ति का प्रयोग उचित रूप से ही किया जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक समझौता सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं तथा 18वीं सदी में इस सिद्धांत पूर्ण प्रधान था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक अवस्था और दूसरा नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। सिद्धांत के सभी प्रतिपादक प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। लेकिन सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादकों में इस अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य अपने इच्छानुसार राजनीतिक और प्राकृतिक नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे और मानते हैं कि व्यक्ति किन्हीं कारणवश इन अवस्था का त्याग करने को विवश हुए और उन्हें समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से लुप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य और कानूनी कोर्ट से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। व्यक्तियों को प्राकृतिक के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। लेखक के शब्दों में, राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिसने में व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किया। सिद्धांत का विकास। समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की तरह ही पुराना है तथा इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त हुआ। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य न था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति से तंग आकर मनुष्य ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। यूनियन में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया। उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और एक समझौते का फल है। एपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने इसका समर्थन किया और रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राज सत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग में भी यह विचार काफी प्रभावपूर्ण था और मेनगोल्ड तथा थॉमस अक्विनास के द्वारा इसका समर्थन किया गया। 16वीं और 17वीं सदी में यह विचार बहुत लोकप्रिय हुआ तथा लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की और डच न्यायाधीश ग्रेसियस वुफेनडोर्फ तथा स्पिनोजा ने इसका पोषण किया, किंतु इन सिद्धांत का वैज्ञानिक तथा विधिवत प्रतिपादन हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया, जिन्हें संविदावादी विचारक कहा जाता है। थॉमस हॉब इंग्लैंड के निवासी थे और राजवंश से संपर्क का कारण उनके विचारधारा राजतंत्रवादी थी। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण विवाद था, जिसमें हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। अपने इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए 1661 में उसने लेवियाथन में समझौते का प्रतिपादन किया। हॉब्स ने इस प्रकार व्याख्या की है। मानव स्वभाव। हॉब्स के समय में चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उनके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा। उसने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। वह सदा शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। प्राकृतिक दशा। इस स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को शंका की दृष्टि से देखने लगे और सभी सुख भूखे भेड़िए के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। मनुष्य के न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था में सत्य ही शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी। स्वयं हॉब्स के शब्दों में, वहां कोई व्यवसाय ना था, कोई संस्कृति ना थी, कोई विद्या ना थी, कोई भवन निर्माण कला ना थी और ना कोई समाज था। मानव जीवन असहाय, दीन, मलिक, पाशविक तथा अल्पकालिक था। समझौते का कारण जीवन और संपत्ति की इस असुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे असहनीय प्राकृतिक व्यवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। समझौता। नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। हॉब्स के अनुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शीर्ष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कहता है, मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम सब पर शासन करे, परंतु इस शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और उसकी आज्ञाओं को माने। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण कर दिया और यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई। यही राज्य का श्री गणेश है। इस समझौते के अंतर्गत शासक कोई पक्ष नहीं है और यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। वह सत्ता इस समझौते का परिणाम है और इस प्रकार उसका पद समझौते से कहीं अधिक उच्च है। राजसत्ता पूर्ण, निरंकुश, अटल तथा अखंड है। नवीन राज्य के रूप। हॉब्स के समझौते द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई है जिसका शासन संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार नहीं है। जॉन लॉक 1632 से 1704। जॉन लॉक इंग्लैंड का ही एक अन्य दार्शनिक था जिसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में टू ट्रीजी ऑन गवर्नमेंट में किया। इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार किया गया। लॉक ने अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। समझौते के सिद्धांत का व्याख्या निम्न प्रकार से की है। मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया की भावनाएं विद्यमान थी। मानव स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती, वरन यह तो सदिच्छा, सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, वरन उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के थे। समझौते का कारण। इस प्राकृतिक अवस्था में कालांतर में व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाएं अनुभव हुई कि इनको दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग उचित समझा। हॉब्स के लॉक के अनुसार ये समस्याएं निम्न थी। ए, प्राकृतिक नियमों को कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। बी, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी। और सी, इन नियमों को मनमाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। समझौता। हॉब्स के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया, किंतु लॉक के वर्णन से ऐसा पता चलता है कि 2 समझौते किए गए। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इसी समझौते का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा है। पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य तथा एक दूसरा समझौता संपन्न हुआ जिसमें शासक वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और लागू करने का अधिकार दिया गया, परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसके द्वारा निर्मित कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे तथा वे जनता के हित में ही होंगे। नवीन राज्य का स्वरूप। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत शासक और शासित के मध्य जो समझौता संपन्न हुआ उसे यह स्पष्ट है कि सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है और लक्ष्य शांति और व्यवस्था स्थापित करना और जनकल्याण। लॉक इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार लॉक के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें वास्तविक एवं अंतिम सत्ता शक्ति जनता में निहित रहती है और सरकार का अस्तित्व तथा रूप जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। जीन जैक्स रूसो 1712 से 1767। रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 में प्रकाशित पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया। हॉब्स और लॉक के समान रूसो के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया, वरन रूसो ने जिस प्रकार से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया उससे वह प्रजातंत्र का अग्रदूत बन गया। और रूसो के द्वारा निम्न प्रकार की व्याख्या की गई है मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के बारे में। रूसो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक समझौता में लिखता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस वाक्य में रूसो इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाइयों में बाधक बनती है। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। यह आदर्श बर्बर अपने में ही इतना संतुष्ट था कि न तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और न किसी का आहित करने की उसकी इच्छा थी। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञान बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता और परित तथा कपट रही जीवन की अवस्था थी। परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था। समझौते का कारण। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। कृषि के आविष्कार के कारण भूमि पर स्थायी अधिकार और इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति तथा तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा तो प्राकृतिक शांति में जीवन नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा में थी। संपत्ति को समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए रूस के लिखता है, वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को बारिश से घेर कर यह कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसे अपने इस कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए। इस प्रकार प्राकृतिक दशा का आदर्श रूप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उपस्थित होता है। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निश्चय किया। समझौता। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह संपूर्ण समर्पण किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक समान इच्छा उत्पन्न हुई होती है और यही सभी व्यक्ति समान इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। स्वयं रूसो के शब्दों में, समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए समान इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के हस्तांतरण से सभी पक्षों को लाभ है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा लोकतंत्र समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है, और यदि सरकार समान इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त होता है। सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना। 18वीं तथा 19वीं सदी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा। हुकर, मिल्टन, ग्रेसियस, वुल्फ, कांट, ब्लैकस्टोन, स्पिनोजा आदि अनेक विचार ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के राजनीतिक विचारक ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना प्रस्तुत की। अंग्रेज दार्शनिक हुम ने घोषित किया, शासक और शासित के संबंध के आधार के रूप में समझौता असंगत है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। सेंट हेनरी मेन कहता है, समाज तथा सरकार की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है। पलंडसली इस सिद्धांत को अत्यधिक भयंकर, ग्रीन ने कपोल कल्पना और बुलजो ने सरासर झूठ बताया। बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वाहन, एडवनबर्ग आदि विद्वान के द्वारा भी इस सिद्धांत की कल्टी आलोचना की गई है। वाहन के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को समझने का उचित साधन है और न ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। इस सिद्धांत की आलोचना ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक और वैधानिक आधार पर की जाती है। पहला, ऐतिहासिक आधार पर। यह समझौता अनैतिहासिक और गल्प मात्र है, क्योंकि इतिहास में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि आदि मनुष्यों ने पारस्परिक समझौते के स्थान पर राज्य का स्थापना किया हो। संविदा सिद्धांत के समर्थक अपने पक्ष में 11 नवंबर 1620 के मेफ्लावर पैक्ट का उदाहरण देते हैं, जिसमें मेफ्लावर नामक जहाज पर बैठे हुए इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाले अंग्रेजों ने अनुबंध किया कि हम लोग शांति और सुख का जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज की रचना करेंगे। किंतु इस उदाहरण से समझौता सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि समझौता सिद्धांत में वर्णित प्राकृतिक अवस्था के लोगों और मेफ्लावर पैक्ट के संबंधित लोगों की राजनीतिक चेतना में बहुत अधिक अंतर है। मेफ्लावर पैक्ट से संबंधित लोग प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे थे, वरन उन्हें राजनीतिक संगठन और राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण ज्ञान था और उन्होंने एक राज्य में प्राप्त अनुभव के आधार पर ही दूसरे क्षेत्र में राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की थी। इस संबंध में डॉक्टर गार्नर ठीक लिखते हैं, इतिहास में ऐसा कोई प्रमाणिक उदाहरण नहीं मिलता जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें पहले से राज्य का पता नहीं था आपसी समझौते से राज्य की स्थापना की गई हो। गिलक्राइस्ट भी इस दृष्टिकोण को मानते हैं। बी, प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है। समझौता सिद्धांत मानवीय इतिहास की ओर प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था इस प्रकार दो कालों में बांट देता है और एक ऐसी अवस्था की कल्पना करता है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का समाज और राज्य नहीं था, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल विभाजन नितांत असत्य है। इतिहास में कहीं पर भी हमें ऐसी अवस्था का परिणाम नहीं मिलता जब मानव संगठन विहीन अवस्था में रहता हो। सी, राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। इतिहास के अनुसार राज्य और इसी प्रकार के अन्य मानवीय संस्थाओं का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य आरंभ से परिवारों में, फिर कुलों में, कबीलों और फिर जनपद और राज्य में संगठित हुआ। लॉ फर्क ने कहा है, परिवार की भांति ही राज्य समाज के लिए आवश्यक है और स्व समझौते का नहीं बरन वास्तविक स्थिति के प्रभाव का परिणाम है। अतः समझौता सिद्धांत किस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य का किसी एक विशेष पर समय पर निर्माण किया गया हो। दूसरा, दार्शनिक आधार पर। ऐतिहासिक आधार पर समझौता सिद्धांत की जो आलोचना की गई है उनमें दृष्टि के रखते हुए कांट आदि अनेक विचारकों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से कोई समझौता न हुआ हो, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से समझौता सिद्धांत के औचित्य पर संदेह नहीं किया जा सकता। उनके मतानुसार इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के स्वरूप एवं व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध को उचित रूप से समझा जा सकता है। दार्शनिक आधार पर भी इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की जा सकती है, जिसमें से प्रमुख हैं: ए, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक ऐसे संगठन के रूप में चित्रित किया गया है जिनकी सदस्यता ऐच्छिक हो, किंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है और व्यक्ति उसी प्रकार राज्य के सदस्य होते हैं जिस प्रकार परिवार के। राज्य की सदस्यता क्लब या व्यावसायिक संस्था की तरह जब चाहे तब त्याग नहीं किया जा सकता है। वर्ग के अनुसार राज्य को काली मिर्च, कहवा, वस्त्र या तंबाकू अथवा ऐसे ही अन्य समान व्यापार की साझेदारी समझौतों के समान नहीं समझा जाना चाहिए, जिसे अस्थायी स्वार्थ के लिए कर लिया गया हो और समझौते के पक्ष इच्छानुसार भंग कर सकते हों। इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, या तो समस्त विज्ञान, समस्त कला, समस्त गुणों और समस्त पूर्णता के बीच एक साझेदारी है। दूसरा, राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या। जिस प्रकार संतान और माता पिता के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी व्याख्या किसी समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध समझौते पर नहीं वरन मानवीय स्वभाव पर आधारित है। आलोचक वान हॉलर कहते हैं, यह कहना कि व्यक्ति और राज्य में समझौता हुआ है उतना ही युक्तिसंगत है जितना यह कहना कि व्यक्ति और सूर्य प्रकार में एक प्रकार का समझौता हुआ है कि सूर्य व्यक्ति को गर्मी दिया करे। तीसरा, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है। मार्कबर्ग कहते हैं, राज्य व्यक्तियों के बीच स्वेच्छा से किए हुए समझौते से नहीं बना है। मनुष्यों को उन सामाजिक आवश्यकताओं से बाध्य होकर राज्य में रहना पड़ा जिससे वह बच नहीं सकता था। यह मानवीय स्वभाव पर आधारित एक प्राकृतिक संस्था है। चौथा, विद्रोह का पोषक। बलंतशली के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यंत भयानक है क्योंकि यह राज्य और अन्य संस्थाओं को व्यक्तिगत संघ का परिणाम बताता है। लाइबर कहा, इस सिद्धांत को अपनाने से अराजकता फैल सकती है और नागरिकों के व्यवस्थित जीवन का अंत हो सकता है। पांचवा, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं। ग्रीन ने ठीक ही कहा है, प्राकृतिक अवस्था में जो कि एक असामाजिक स्थिति होती है अधिकारों की कल्पना स्वयं ही एक विरोधाभास है। समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि वह अनैतिहासिक है, वरन यह है कि उसके अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों का समाज से पृथक भी अस्तित्व संभव मान लेना है। तार्किक आधार पर यह समझौता केवल इतिहास दर्शन वरन तर्क की दृष्टि से भी नितांत असंगत है। यह समझ में नहीं आती है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों जो कि राज्य संस्था से नितांत अपरिचित थे एकाएक एक राजनीतिक चेतना का उदय कैसे हो गया। हमारा व्यवहारिक अनुभव बताता है कि राजनीतिक चेतना सामाजिक जीवन से ही उत्पन्न होती है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में इतने शीघ्रगामी और आशाजनक परिवर्तन की व्याख्या तर्क के आधार पर संभव नहीं है। कहावत है, एक रात में चीता अपना रंग नहीं बदल सकता। वैधानिक आधार पर भी यह सिद्धांत खड़ा नहीं उतरता, जिसके अनेक दोष हैं। ए, प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं। यदि तर्क के लिए मान लिया जाए कि मनुष्य सामाजिक चेतना में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह समझौता कर सके, तो वैधानिक दृष्टि से भी इस समझौता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वैधानिकता प्रदान होने के लिए किसी भी समझौते के पीछे राज्य की स्वीकृति का बल हो, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में राज्य का अस्तित्व नहीं था, इस प्रकार समझौते के पीछे कोई शक्ति नहीं थी। ग्रीन के शब्दों में, समझौता सिद्धांत में चित्रित प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत कानूनी दृष्टि से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि समझौता वैध नहीं है, अतः उससे प्राप्त सब अधिकार भी मिथ्या हो जाते हैं। दूसरा, समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है। कोई भी समझौता जिन निश्चित लोगों के द्वारा मध्य होता है उन्हीं पर लागू होता है, अतः किसी अज्ञात समय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया समझौता उसके बाद के समय और वर्तमान लोगों पर लागू हो, यह कानूनी दृष्टि से अमान्य है। बेंथम के अनुसार, मेरे लिए आज्ञा पालन जरूरी है, इसलिए नहीं कि मेरे परपितामह ने जॉर्ज द्वितीय के परपितामह से कोई समझौता किया है, वरन इसलिए कि विद्रोह से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। इसी प्रकार तर्क अपनाते हुए डॉक्टर एच बादम कहते हैं, यदि पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाए तो उनके बच्चों के दांत क्यों उतरे। समझौता सिद्धांत का महत्व। यद्यपि सामाजिक समझौता सिद्धांत की इतनी आलोचनाएं की गई हैं और आज यह सिद्धांत अस्वीकृत हो गया है, किंतु राजनीतिक विचारकों के इतिहास में यह सिद्धांत पर्याप्त महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का खंडन किया गया, जिसके अंतर्गत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मैकावर लिखता है, ऐतिहासिक दृष्टि से इस सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उन असंख्य तर्कों को समाप्त कर दिया जो धार्मिक ग्रंथों की त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं पर आधारित थे, और राज्य के द्वारा एक सच्चे आधार पर आश्रित कर दिया, अर्थात इसने लोगों की इच्छा और समान उद्देश्य को राज्य का आधार बनाया। दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा इस सत्य का प्रतिपादन किया गया कि शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा नहीं वरन जन सहमति ही राज्य का अधिकार आधार है। यह सिद्धांत इस मौलिक तथ्य का समर्थक है कि राजा अपनी शक्ति प्रजा से प्राप्त करता है और राजा को मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तीसरा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत द्वारा प्रभुता संबंधी विचारधारा में भी महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। हॉब्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया, लॉक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रेरणा प्रदान की, और रूसो के समान इच्छा संबंधी विचारों से लोकप्रिय प्रभुसत्ता पॉपुलर सॉवरेनिटी संबंधित धारणा का अपूर्व बल मिला। इस प्रकार सामाजिक समझौता ने राजनीतिक विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है, और लॉक द्वारा रूसों की विचारधारा ने कुछ देशों के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। अब ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी। राज की उत्पत्ति के संबंध में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उनमें दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक मातृक सिद्धांत प्रमुख है, लेकिन इनमें किसी भी सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन सारे सिद्धांतों में यह स्वीकार किया गया है कि राज्य का निर्माण एक विशेष समय पर किया गया है, परंतु राज्य निर्माण नहीं वरन एक निरंतर विकास का परिणाम है। मातृ और पितृ सिद्धांत के आधार पर इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य परिवार का विस्तार मात्र है, क्योंकि परिवार और राज्य की प्रकृति में कुछ आधारभूत भेद हैं, डॉक्टर गार्नर कहते हैं। डॉक्टर गार्नर, राजनीति तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। राज विकास का परिणाम है, और राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गई है। इसके अनुसार राज्य का विकास लंबे समय से आ रहा है, और आदिकालीन समाज के क्रमिक विकास करते करते इसने यह स्वरूप प्राप्त कर लिया है। बर्गेस कहते हैं, राज मानव स्वभाव का निरंतर विकास है, जिसका प्रारंभ अत्यंत अधूरे और विकृत उन्नतशील रूप में अव्यक्त होकर मनुष्य के एक समग्र एवं सार्वभौम संगठन की ओर हुआ है। यह बताना कि कब और किस प्रकार राज्य अस्तित्व में आया अत्यंत कठिन है। इसमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर और केलर ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोसाइटी में कहा है, यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार संभव है कि किस यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने, या बच्चा कब हुआ और युवक कब एक प्रौढ़ बना। अन्य सामाजिक समझौतों के समान ही विभिन्न परिस्थितियों में सहायता पाकर और अनेक तथ्यों से प्रभावित होकर यह आविर्भूत हुआ। राज्य विकास का एक सा क्रम नहीं है, प्रकृति परिस्थिति और स्वभाव के भेदों के कारण विभिन्न समय अवस्थाओं और स्थानों में राज्य का विकास का क्रम भी भिन्न है। भाषा और राजनीतिक चेतना के समान ही राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ। राज्य के विकास के प्रमुख तत्व ये हैं, रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रकृतियाँ, धर्म, शक्ति, आर्थिक आवश्यकताएं तथा राजनीतिक चेतना। प्रथम, रक्त संबंध। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्राचीनतम सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप रक्त संबंध पर आधारित था। अंग कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है। प्रारंभिक समय में जो बातें पास लाती थी वह एक दल के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती थी। समाज के प्राचीनतम इतिहास के आधुनिक गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त ही था। आगे चलकर जब जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा और जाति और कुल बने तब समाज का जन्म हुआ। मैकावर कहते हैं, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। दूसरा, मनुष्य की स्वाभाविक और सामाजिक प्रवृत्ति। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और समूह की प्रवृत्ति मानव प्रवृत्ति के द्वारा ही जन्म को दिया गया है। समाज में साथ रहते रहते तो विभिन्न व्यक्तियों और स्वभाव के स्वार्थगत भेदों के कारण विभिन्न विवाद उत्पन्न होने के कारण एक प्रभुता संपन्न राजनीतिक संस्था की आवश्यकता समझी गई, जिसके कारण राज्य का उदय हुआ। इस संबंध में जॉन मार्ले कहते हैं, राज्य के विकास का वास्तविक आधार मनुष्य के जीवन में विद्यमान अंतर्जात प्रवृत्ति रही है। धर्म। प्रारंभिक समाज में धर्म समान रक्त का प्रतीक, उसकी एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति था। गैटल तो यहाँ तक लिखते हैं, रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता व उनके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता थी। प्रारंभिक समय में पितृपुता और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के कारण और अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मृत हो जाने पर उसके प्रति श्रद्धा रखते थे और शरीर मानते थे कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा शेष रहती थी। अतः आत्मा को पूजा करने में विभिन्न परिवारों को एकता के सूत्र में बांधा और धीरे धीरे एक ही परिवार के वंश कुल देवता भी एक हुए और अधिकतर उनके पुरखे होते थे। इस प्रकार विभिन्न शक्ति के उपासकों में परस्पर घनिष्ठ मैत्री संबंध उत्पन्न हुआ, जो राज्य का आधार बना। प्रारंभिक समाज में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को देवता या भूत प्रेत समझा जाता था, और जब कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता था कि वह प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है तब समाधान में उन्हें असाधारण शक्ति और सम्मान प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार धर्म के द्वारा एक से अधिक रूप में राज्य के विकास को योगदान दिया। चौथा, शक्ति। जेंग्स कहते हैं, जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपाय से नहीं वरन युद्ध के द्वारा हुआ है। अन्य मनुष्यों पर आधिपत्य स्थापित करने और संघर्ष एवं आक्रमण की प्रवृत्ति भी मनुष्यों की मूल प्रवृत्तियों में से एक है। ऐसी स्थिति में निवास स्थान तथा संपत्ति की रक्षार्थ युद्ध होने लगे और युद्ध ने नेतृत्व के महत्व को जनता के सामने रखा। इस प्रकार युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई। कहा गया है, युद्ध से राजा का जन्म होता है। पांचवा, आर्थिक गतिविधियां। प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू राज्य की उत्पत्ति में विकास के आर्थिक तत्व के योग को स्वीकार करते हैं। इससे बढ़कर कार्ल मार्क्स ने यह कहा है कि राज आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। आदिमकाल से आज तक मनुष्य चार आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा हुआ है। उसके अनुकूल ही तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक संगठन रहे हैं। पहला है आखिरी अवस्था, मनुष्य के एक जीवन का एकमात्र लक्ष्य साधन शिकार था और मनुष्य का जीवन अस्थिर और भ्रमणशील था। दूसरा, पशुपालन अवस्था में पशु पालकर अपना गुजारा करता था, उसका जीवन भ्रमणशील ही था किंतु सामूहिकता और संगठन का अंश आ गया था। तीसरा, कृषि अवस्था में जीवन का आधार कृषि हो गया और निश्चित था स्थायी रूप से रहने लगे, निजी संपत्ति का उदय हुआ, समाज में वर्ग पैदा हुआ और संगठन बढ़े, ऐसे में कानून न्यायालय और राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। चौथा, आज की औद्योगिक अवस्था है जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास ने मनुष्य के राजनीतिक संगठन में परिवर्तन हुए हैं और राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव स्पष्ट है। जब छठा, राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिनके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। अनेक विद्वानों के अनुसार राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया है। जब व्यक्ति किसी निश्चित प्रदेश पर बस गए, उनके द्वारा अपनी आजीविका के स्थायी साधन प्राप्त कर लिए गए, तो उनकी स्वाभाविक इच्छा की चिंता हुई कि दूसरे लोग उनके साधनों को हड़प न लें। फलतः नियमों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी और यही राजनीतिक चेतना का मूल था। प्रारंभ में यह राजनीतिक चेतना अप्रकाशित एवं अव्यक्त रूप में थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ यह प्रकाशित तथा व्यक्त होने लगी। शासन, अनुशासन, युद्ध आदि के लिए अब राजनीतिक संगठन की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों में शक्ति की आकांक्षा भी बढ़ी और सैनिक कार्यवाहियों द्वारा वे अधिकाधिक शक्ति की प्राप्ति करने लगे। युद्ध में विजयी नेता राजा हो गए और उनके प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार शासन और कानून का जन्म हुआ और राज्य मूर्त रूप में सामने आया। वर्तमान समय में भी राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में सक्रिय है और इसी चेतनावश मानव जाति द्वारा विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में सोचा जाने लगा है। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा पुखराज जैन की पुस्तक से बीए प्रथम वर्ष हेतु राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत के लिए किया गया है।